स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम हम से है देश में। मैं हूं आपका दोस्त कबीर, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
कामायनी। कबीर, जानते हो मुझे सबसे अच्छी खुशबू कौन सी लगती है?
कौन सी?
मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, पहली पहली बारिश के बाद।
क्या बात है। अच्छा, बारिश से मुझे याद आया, क्या तुम्हें मालूम है जिस दिन भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया था उस दिन भी बारिश हो रही थी।
भारत के संविधान बनाने वालों को क्या इस बात का एहसास रहा होगा कि उनके लिखे बोल और कहे विचार आज भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे? आखिर संविधान हमारे जैसे नागरिकों ने ही तो बनाया था।
ठीक कहा। शायद इसीलिए भारत के संविधान को कहा जाता है अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीता जागता दस्तावेज।
दोस्तों, आइए चलते हैं बुलबुल बाग की तरफ और देखते हैं वहाँ के पशु पक्षी कैसे लिखते हैं अपना भविष्य, अपना संविधान, अपने अगले सेगमेंट बेताल छब्बीसी में।
बेताल छब्बीसी, बेताल छब्बीसी, बेताल छब्बीसी रे।
बेताल, अरे बेताल, एक बहुत ही बुरी खबर है, बाहर तो आओ।
हेलो, आ गया। क्या खबर है राजन?
कमाल करते हो तुम, पहले मुझसे कहते हो कि मेरा राजपाट छूट गया और खुद ही मुझे राजन राजन कहते हो।
अरे वाह, लगता है तुम लोकतंत्र की घुट्टी पूरी तरह पी गए हो। ये तो अच्छी खबर है, बुरी खबर क्या है?
बुरी खबर ये है कि मैं जब भी लोकतंत्र का हिस्सा बनने की कोशिश करता हूँ मुझे हमेशा नियम और कानून बता दिए जाते हैं, उनसे आगे मैं निकल ही नहीं पाता।
बस इतनी सी बात? आओ तुम्हें नियम कानून का महत्व बताऊं। बुलबुल बाग में हुए चुनाव के नतीजे आए और चपल चींटी को बुलबुल बाग ने अपना नेता चुना।
आप लोगों के प्यार और विश्वास से आज मुझे आप लोगों ने अपना नेता चुना है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बुलबुल बाग और बुलबुल बाग वासियों के हित के लिए काम करें। तो सबसे पहला काम जो हमने सोचा है वो है संरक्षण का, और इस काम की जिम्मेदारी दी जाती है हुकुम चंद हंस और शेख चंद सारस को।
बुलबुल बाग में संरक्षण के लिए कमेटी रहेगी और चयनित सदस्य गायब होते जानवर और पक्षी होंगे। हैं? अब इनसे बेहतर रखरखाव के लिए मार्गदर्शन कौन कर सकता है?
कि बुलबुल बाग के हर जानवर और पक्षी की नुमाइंदगी यानी रिप्रेजेंटेशन हो।
हुकुम चंद हंस ने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त सभी के साथ साझा की, हाइना से लेकर चींटी तक, नेवले से लेकर घड़ियाल तक और मोर से लेकर गिद्ध तक अनेकों का नाम लिया, पर गिद्ध का नाम सुनते ही एक खामोशी छा गई।
गिद्ध तो भद्दे होते हैं, उन्हें हम ऐसी प्रतिष्ठित जगह पर कैसे रख सकते हैं?
इतनी गंदगी भरे पक्षियों को संरक्षण की क्या समझ होगी भला?
पर लोकतंत्र में तो सबकी भागीदारी चाहिए ना?
भैया, ये कैसा लोकतंत्र हुआ जिसमें हमारी बात ना सुनी जाए? हैं? क्यों? नेक नेवले जी, आप ही ने पढ़ाया है ना इन्हें लोकतंत्र का पाठ, आप ही समझाइए।
मेरे सारस भाई, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा होना ही है कि गिद्ध जैसे उपेक्षित पक्षी भी आगे आए और उन्हें भी उनका हक मिले।
भला ऐसे कहाँ लिखा है? बोलो चपल चींटी, तुम हो इन सबकी नेता, बताओ कहाँ लिखा है?
लिखा तो नहीं है हंस साहब, पर लगता है कि लिखना पड़ेगा।
ये सुनकर सभी हैरान हुए कि अब क्या लिखना पड़ेगा, क्या नई सरकार लाना, नेता चुनना वगैरह वगैरह काफी नहीं था?
अब और क्या बचा है इस लोकतंत्र में चींटी मोहतरमा?
संविधान लाना, क्यों नेवले जी?
बिल्कुल ठीक, संविधान के बिना लोकतंत्र अधूरा रहेगा और बुलबुल बाग के वासी बार बार अपनी मनमर्जी से भेदभाव करते रहेंगे।
इस गर्मा गर्म बहस के कुछ दिनों के अंदर ही एक मीटिंग बुलाई गई, संविधान की बात सबके सामने रखी गई। चपल चींटी ने शुरुआत करते हुए कहा,
तो आज हम सब मिलकर बुलबुल बाग के नियम और कानून तय करेंगे। आप बताइए कि हमारा सबसे पहला नियम क्या होना चाहिए।
सभी को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए।
बिल्कुल ठीक, पर उस बात से किसी दूसरे के हक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
अगर कोई जानवर या पक्षी गलती करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए।
वो भी ठीक, पर दोषी पाए गए जानवर या पक्षी को अपना पहलू रखने का भी मौका मिलना चाहिए।
और ऐसे ही कई नियम कानूनों की आपस में चर्चा होती रही।
पर आप सब सबसे जरूरी नियम तो भूल ही गए। यही कि सभी जानवर और पक्षी बराबर हैं, जैसे हंस वैसे सारस और बिल्कुल वैसे ही गिद्ध।
इस मीटिंग के बाद सभी की सहमति के साथ सभी नियम तय हुए और इसका दस्तावेज बनाने का जिम्मा दिया गया नेक नेओले को, जिसने एक पुख्ता दस्तावेज तैयार किया जिस पर लिखे सारे नियम कानून बुलबुल बाग के हित में थे और सभी को मान्य भी, और संरक्षण कमेटी में गिद्ध भी शामिल हुए। तो क्या समझे विक्रम, संविधान क्या सिर्फ एक किताब है?
नहीं, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जो सभी के हित देखता है, सभी को बराबरी का दर्जा दिलाता है और साथ ही साथ खुद में बदलाव की भी गुंजाइश रखता है।
सही जवाब, और ये मैं उड़ा।
बेताल, बेताल, बेताल सुनो तो, बेताल।
दोस्तों आप सुन रहे हैं हमसे है देश, मैं हूँ कामायनी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट कबीर। हमने ये तो जान लिया कि बुलबुल बाग के संविधान का जन्म कैसे हुआ। चलिए अपने अगले सेगमेंट में आपको भारत के संविधान के कुछ प्रमुख और अनोखे पहलुओं से परिचित कराते हैं। देश विदेश
से। दोस्तों क्या आपको मालूम है भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। आज की तारीख में इसमें 465 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित हैं। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। हमारे संविधान में 100 संशोधन किए जा चुके हैं। 29 अगस्त 1947 में एक समिति की स्थापना की गई जिसे भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया और इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को।
I want all of us to realize that whether we are right or wrong।
दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं, इतना लंबा संविधान ना तो टाइप किया गया ना ही प्रिंट किया गया, और मुझे सबसे अनोखी बात ये लगी कि मसौदा तैयार करने वाली समिति ने संविधान अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हाथ से लिखा था। जैसा कि हम अपने दोस्तों को पहले ही बता चुके हैं, रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की तारीख भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी दिन भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम के रूप में सारनाथ के अशोक स्तंभ के शेरों को अपनाया था। अशोक के शेरों के साथ हैं पहिया, बैल और घोड़ा। दोस्तों भारत के संविधान को बने 65 वर्ष होने को आए, आज भी हमारा संविधान पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन माना जाता है। हमारे संविधान के मालियों ने बहुत सुंदर बीज बोए जिसके फूल क्यारियों में आज भी महकते हैं। भारत के संविधान के बारे में हमने तो आपको कुछ नया बताया, तो अब आप सबसे ही पूछ लेते हैं कि आपको हमारे संविधान के बारे में क्या पता है।
तो आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट एक था नागरिक।
संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है?
सभी को अनुशासन में रखने की एक प्रक्रिया है।
किस प्रकार से सरकार चलेगी, लोगों के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, किस प्रकार से देश चलेगा, उसी की वो डॉक्यूमेंट किया हुआ है एक एक चीज़, और उसके अंदर उसको अमेंड भी करते रहते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि मतलब एक नया रूल, जिस रूल से हम चल रहे हैं, कानून के अंदर रह के हम काम कर रहे हैं, तो उसमें हम सही से अपना भागीदारी निभा पाएं बस।
संविधान जो है हमें अधिकार देता है, हमें हक देता है, और हमारे लिए जो कानून बनता है संविधान के अनुसार, वो हमारी सुरक्षा के लिए, तो संविधान से हमें फ़ायदा ही है।
संविधान जो बना है, बाबा जी ने बनाया है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें जो कमियां हैं वो दूर भी की जा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए उन कमियों को हटाना गलत बात है।
संविधान एक रूल का सेट है, सेट ऑफ रूल्स, जिसके जिससे हर चीज़ नियमित रूप से चल सकता है हमारे देश में, और संविधान की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो किस चीज़ का कोई हिसाब नहीं रहेगा कि क्या कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए।
अब बारी है आपके इम्तिहान की और सरप्राइज गिफ्ट की। सवाल है, भारत के संविधान के रचनाकार कौन थे?
दोस्तों मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो मोबाइल उठाइए और कॉल कीजिए 07966210428 पर। दिए गए ऑप्शंस के लिए बटन दबाइए और पाइए हमारा सरप्राइज गिफ्ट, कॉल निशुल्क है।
संविधान सभा के 5वें सत्र में हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि एजेंडा पर पहला आइटम वंदे मातरम गीत है, तो क्यों ना आज का कार्यक्रम हम इसी गीत के साथ संपन्न करें।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
अगर आप लोकतंत्र से जुड़ी अपनी कविताएं और गाने भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजें। हमारा पता है, आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन, 1381 सेक्टर 37 फरीदाबाद 121003 हरियाणा, और ईमेल आईडी है freedom@idiosyncmedia.org। SMS और फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9958747972।
कार्यक्रम हमसे है देश आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के वित्तीय सहयोग से आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। बुलबुल बाग की कहानी रंजीत लाल की किताब द क्रो क्रॉनिकल्स पर आधारित है।
तो अब हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।